नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज मुस्तफा कमाल के पश्चात का टर्की नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। इस अध्याय में मुख्यतः इस्मत इनोनू के बारे में चर्चा की गई है। इस्मत इनोनू का व्यक्तित्व, मुस्तफा कमाल की मृत्यु के पश्चात उसका स्थान उसके प्रमुख सहयोगी इस्मत इनोनू ने लिया। वह एक साथ गणराज्य का राष्ट्रपति एवं गणतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। वास्तव में इस्मत इनोनू मुस्तफा कमाल का अन्यतम सहयोगी था। उसका जन्म 24 सितंबर 1884 में हुआ था तथा उसका पिता हाजी रशीद बे एक न्यायाधीश था। वह 1906 ईस्वी में सैनिक महाविद्यालय से स्नातक होकर निकला और अड्रियानोपोल में एकता प्रगति संघ के संपर्क में आया। 1910 ईस्वी में वह यमन भेजा गया एवं 1912 ईस्वी में वहां की सेना का प्रधान अधिकारी बन गया। प्रथम महायुद्ध में यह कुछ दिनों तक मुस्तफा कमाल के प्रधान सेनाधिकारी रहा तथा युद्ध के अंत होने पर उसे कर्नल का पद मिला। उसने भी आरंभ से ही महान राष्ट्रीय सभा को अपनी सेवाएं अर्पित की, अतः वह राष्ट्रवादी सेनाओं का प्रधानाधिकारी नियुक्त हुआ। वह इस काल में इनोनू के दो युद्धों में ग्रीकों के विरुद्ध सफलता के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ। इसी विजय की स्मृति में उसने अपनी पदवी इनोनू रखी। युद्ध के पश्चात लोजान सम्मेलन में वही प्रधान तुर्क प्रतिनिधि बनकर गया और वहां भी उसने वही दृढ़ता दिखलाई जो उसने समर क्षेत्र में दिखलाई थी। इस तरह उसने सैनिक योग्यता के साथ साथ राजनीतिक योग्यता का भी प्रदर्शन किया। वह कमाल का मुख्य सहयोगी बन गया और गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। अतः मुस्तफा कमाल की मृत्यु के पश्चात उसके पद के लिए वह योग्यतम व्यक्ति था। अगले 10 वर्षों तक वह इसी पद पर बना रहा। इस्मत इनोनू की आंतरिक नीति। इस्मत इनोनू ने जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो उसके सम्मुख कई समस्याएं आई। कमाल ने अल्पकाल में ही टर्की को एक एशियाई धर्म प्रधान राष्ट्र से एक धर्म निरपेक्ष पाश्चात्य राष्ट्र में परिणत कर दिया था। उसने अपने विरोधियों को कुचल कर रख दिया था एवं प्रेस तथा शासन तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखा था। देश में कोई भी विरोधी दल विकसित नहीं हो सका था, परंतु परंपरा की जड़ें नष्ट नहीं हुई थी और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके विरोधियों ने सर उठाना आरंभ किया। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और उसने टर्की को एक नए संकट में डाल दिया, जिससे कई आंतरिक समस्याएं उठ खड़ी हुई। देश में महंगाई ने जोर पकड़ा एवं सेना पर व्यय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त तुर्क लोग एक दलीय शासन से उब बैठे थे तथा इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। इस्मत इनोनू एक योग्य सैनिक था और राजनीतिक दांवपेच का खेल भी जानता था, परंतु उसमें मुस्तफा कमाल की क्रियात्मक योग्यता का अभाव था। फलतः उसने समस्याओं को निपटाने में प्रशासनिक दृढ़ता नहीं दिखाई तथा धीरे धीरे उसका दल बदनाम होने लगा, जिसके कारण अंत में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आंतरिक कार्य। सर्वप्रथम युद्ध के झंझावात से आक्रांत होकर 11 नवंबर 1942 ईस्वी को टर्की ने एक नया जायदाद कर लगाया जो प्रायः सभी नागरिकों पर लागू किया, परंतु इसमें धर्म निरपेक्षता की भावना को तिलांजलि दे दी गई और गैर मुस्लिमों से 10 गुना अधिक टैक्स लगाया गया। जो कर नहीं दे सका उसकी संपत्ति नीलाम कर ली गई तथा टैक्स पूरा नहीं होने पर उन्हें राज्यानुचालित श्रम शिविरों में भेज दिया गया। इस अदूरदर्शी कार्य से व्यवसाय को काफी हानि पहुंची तथा टर्की के नाम पर एक धब्बा लग गया। अंत में इसकी समाप्ति 15 मार्च 1944 को की गई, परंतु इसमें चारों ओर अशांति छा गई और अशांति की भावना बढ़ गई। वास्तव में यह प्रतिक्रियावादियों की बढ़ती शक्ति का द्योतक था। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी मुस्तफा कमाल की उदारवादी एवं धर्मनिरपेक्ष नीति के विरोधी शक्तियों ने सर उठाया और नीति परिवर्तन का मांग होने लगी। सितंबर 1945 ईस्वी में नूरी डेनी राग ने एक राष्ट्रवादी पुनर्स्थापन दल की स्थापना की तथा मुस्तफा कमाल की नीति में प्रत्यावर्तन का कार्यक्रम रखा। यद्यपि इस दल को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, तथापि देशव्यापी असंतोष बढ़ता ही गया। शिक्षित वर्ग प्रतिबंधों का अंत चाहते थे, व्यापारी वर्ग नए स्रोतों की खोज में थे, श्रमिक वर्ग सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध थे, धर्मांध तुर्क इस्लाम का पुनर्प्रतिष्ठापन चाहते थे और अल्पसंख्यकों में जायदाद कर के कारण भयानक क्षोभ था। इस प्रकार टर्की के सभी वर्गों के लोग सरकारी नीति में परिवर्तन की आकांक्षा रखते थे। इस्मत इनोनू स्वयं इस दिशा में बाधक नहीं बनना चाहता था, अतः 1 नवंबर 1945 ईस्वी को उसने महान राष्ट्रीय सभा में अपने भाषण में विरोधी दल की अनिवार्यता पर जोर दिया। अब तक महायुद्ध का अंत हो चुका था तथा दमनकारी प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी समय रिपब्लिकन दल में फूट हो गई तथा इसके कतिपय सदस्यों ने 7 जनवरी 1946 ईस्वी को डेमोक्रेटिक दल का निर्माण किया। दल प्रथा। नवीन दल के मुखिया नेता सेलाल बयार एवं अदनान मेंदरस थे। सेलाल बयार मुस्तफा कमाल का पुराना सहयोगी और उसने तुर्क आंदोलन में भाग लिया था। वह टर्की के मंत्रिमंडल का अनुभवी सदस्य था तथा मुस्तफा कमाल के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री था। अदनान मेंदरस भी एक सुशिक्षित एवं योग्य राजनीतिज्ञ था। इनके अतिरिक्त नवीन दल में कई अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। इस दल ने राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में राज्यानुशासित नियंत्रणों का विरोध किया और वैयक्तिक स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। इस दल के नेता कमाल के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं थे, परंतु उनके पुनरावलोकन के पक्ष में थे। जुलाई 1948 के आम निर्वाचन में इस दल को 62 स्थान प्राप्त हुए। वास्तव में टर्की के प्रशासनिक अधिकारी शासन परिवर्तन के विरुद्ध थे तथा निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हो पाता था, परंतु डेमोक्रेटिक दल ने अपना अभियान जारी रखा और इसका प्रभाव शासन पर भी पड़ा। 2 जुलाई 1947 को मुस्लिम धार्मिक शिक्षा पर से भी प्रतिबंध उठा लिया गया। वास्तव में रिपब्लिकन दल के सदस्यों में भी मतैक्य नहीं था तथा वे भी प्रशासनिक नीति में परिवर्तन चाहते थे। इसी समय जुलाई 1948 ईस्वी में एक नेशनल पार्टी का जन्म हुआ जो प्रतिक्रियावाद के पक्ष में था। अतः इस्मत इनोनू ने देश की नारी परख ली तथा इसके जोर देने पर फरवरी 1950 ईस्वी में एक निर्वाचन विधि लागू की गई, जिसके अनुसार गुप्त मतदान एवं सार्वजनिक मतगणना की व्यवस्था की गई और निर्वाचन की देखरेख का उत्तरदायित्व न्यायपालिका के हाथ में दे दिया गया। इस प्रकार निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई तथा इस्मत इनोनू ने इसके प्रचारार्थ देश का भ्रमण किया। मई 1950 ईस्वी में नई विधि के अनुसार आम निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ तथा डेमोक्रेटिक दल को कुल 487 स्थानों में 408 स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई तथा रिपब्लिक सत्ता का अंत हुआ। महान राष्ट्रीय सभा ने 22 मई 1950 को सेलाल बयार को अपना राष्ट्रपति निर्वाचित किया तथा अदनान मेंदरस प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार रिपब्लिक दल के 30 वर्षीय शासन का अंत और डेमोक्रेट दल के शासन का आरंभ हुआ। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।